एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत। आज हम एक ऐसे जर्मन दार्शनिक की दुनिया में गहरी उतर रहे हैं जिनके विचारों ने, आप कह सकते हैं, पश्चिमी दर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गियोर्ग विलहेम फ्रेडरिक हेगल।
हाँ बिल्कुल।
1770 से 1831 तक का उनका जीवन काल रहा और ये यूरोप के इतिहास का शायद सबसे तूफानी दौरों में से एक था।
सही कहा।
और उनके विचार भी उतने ही गहरे और कह सकते हैं प्रभावशाली रहे। उन्हें अक्सर जर्मन आदर्शवाद का शिखर पुरुष कहा जाता है।
हाँ, और हेगल का इरादा कोई छोटा मोटा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी एक व्यापक दार्शनिक प्रणाली, एक सिस्टम बनाना चाहते थे जो पूरी की पूरी वास्तविकता को, मतलब इतिहास, तर्क, समाज, यहाँ तक कि ईश्वर को भी एक ही तर्कसंगत और लगातार विकसित होते हुए फ्रेमवर्क में समझा सके।
ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य था।
हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी। तो आज की इस चर्चा में हम उनके कुछ बुनियादी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे उनका वो प्रसिद्ध द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक जिसे कहते हैं।
हाँ, वाद प्रतिवाद संवाद वाला।
हाँ वही। और गाइस्ट की जो उनकी अवधारणा है, गाइस्ट, जिसे हम आत्मा या मन कह सकते हैं, हालांकि ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और साथ ही उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं और उनके विचारों की आज क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे।
बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि वो किस माहौल में सोच रहे थे, लिख रहे थे। 18वीं सदी का अंत, 19वीं की शुरुआत, यूरोप में बड़ी उथल पुथल थी।
बिल्कुल।
एक तरफ तो वो एनलाइटनमेंट, मतलब प्रबोधन का दौर था, जहाँ तर्क और विवेक पर बहुत जोर था।
हाँ।
और दूसरी तरफ वो स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म उभर रहा था, जो इतिहास, भावना, राष्ट्र की आत्मा, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था।
और इसी उथल पुथल के बीच में थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और फिर उसके बाद के नेपोलियन वाले युद्ध।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था।
इन घटनाओं ने हेगल को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने इतिहास को सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं माना। उनके लिए इतिहास वो संघर्ष, विरोधाभास और अंततः स्वतंत्रता की ओर बढ़ती हुई एक तर्कसंगत प्रक्रिया थी।
अच्छा, मतलब इतिहास का एक मकसद है, एक दिशा है।
हाँ, उनके हिसाब से बिल्कुल। और ये विचार उनके समय की घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़े थे।
आपने नेपोलियन का जिक्र किया, उनसे जुड़ा कोई किस्सा भी है शायद, हेगल और नेपोलियन का?
हाँ, एक बहुत मशहूर किस्सा है। 1806 में जेना शहर में हेगल ने नेपोलियन को घोड़े पर सवार देखा। कहते हैं उस पल ने उन पर गहरा असर डाला।
क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने नेपोलियन को कहा, घोड़े पर सवार विश्व आत्मा, वर्ल्ड सोल ऑन हॉर्स बैक।
वाह।
उनके लिए नेपोलियन कोई सिर्फ एक शासक नहीं था, वो इतिहास की जो तर्कसंगत शक्ति है उसका एक जीता जागता प्रतीक था। वो व्यक्ति जो दुनिया को बदल रहा था, इतिहास को आगे बढ़ा रहा था।
ये दिखाता है कि वो कैसे घटनाओं में भी गहरा दार्शनिक अर्थ देख रहे थे।
बिल्कुल।
और दार्शनिक दुनिया में उस समय उनका मुख्य संवाद किससे था? इमानुएल कांट का नाम तो आता ही होगा।
हाँ, कांट तो बहुत महत्वपूर्ण थे उनके लिए, एक तरह से शुरुआती बिंदु थे। हेगल कांट के काम को दर्शन में एक जरूरी कदम मानते थे, पर उन्हें लगता था कि कांट का काम अधूरा है।
अधूरा किस मायने में?
देखिए, कांट का मानना था कि हमारी जो मानवीय समझ है उसकी सीमाएं हैं। हम परम वास्तविकता, जिसे वो वस्तु अपने आप में, थिंग इन इटसेल्फ कहते थे, उसे कभी पूरी तरह जान नहीं सकते। हमारी समझ उसे आकार देती है।
अच्छा, तो हेगल इस सीमा को नहीं मानते थे?
नहीं, हेगल ज्यादा आशावादी थे, ये कहिए ज्यादा महत्वाकांक्षी। उनका मानना था कि तर्क और वास्तविकता ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये मूल रूप से एक ही हैं।
एक ही हैं।
हाँ, इसलिए अगर हम तर्क की संरचना को, उसके काम करने के तरीके को समझ लें, तो हम वास्तविकता की संरचना को भी समझ सकते हैं। ये कांट के विचारों से एक बहुत बड़ा डिपार्चर था।
और उस समय के दूसरे दार्शनिकों से भी उनका संवाद था।
हाँ बिल्कुल। योहान गॉटलिब फिख्टे और फ्रेडरिक विलहेम जोसेफ शेलिंग जैसे दूसरे जर्मन आदर्शवादी थे। शेलिंग तो उनके यूनिवर्सिटी के साथी भी थे। इन सबका लक्ष्य भी एक तरह से एक पूरी, एक संपूर्ण दार्शनिक प्रणाली बनाना ही था।
चलिए थोड़ा उनके जीवन पर भी नजर डालें। हेगल कहाँ से आए थे? उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी?
उनका जन्म स्टुटगार्ट में हुआ था, दक्षिण पश्चिम जर्मनी में। एक ठीक ठाक मध्यम वर्गीय प्रोटेस्टेंट परिवार था। शुरुआती पढ़ाई में वो मेहनती तो थे, पर कोई बहुत असाधारण छात्र नहीं माने जाते थे।
अच्छा।
हाँ, उनका असली बौद्धिक जागरण हुआ ट्यूबिंगन शहर की एक प्रोटेस्टेंट सेमिनरी में, जिसका नाम था ट्यूबिंगर स्टिफ्ट।
हाँ, मैंने सुना है वहाँ उनकी दोस्ती कुछ बहुत ही कमाल के लोगों से हुई थी।
बिल्कुल सही। वहां उनकी गहरी दोस्ती हुई शेलिंग से, जो बाद में खुद एक बड़े दार्शनिक बने, और कवि फ्रेडरिक होल्डरलिन से।
वाह,
ये तीनों युवा थे और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा से बहुत प्रभावित है। कहते हैं घंटों इन पर बहस करते रहते थे।
ये उनके विचारों के बनने का शुरुआती दौर था।
और फिर अकादमिक दुनिया में उनका सफर कैसे आगे बढ़ा?
शुरुआत में उन्होंने कुछ समय प्राइवेट ट्यूटर के तौर पे काम किया, फिर एक छोटी सी विरासत मिली जिससे उन्हें अकादमिक करियर बनाने में थोड़ी मदद मिली। लगभग 1800 के आसपास उन्होंने अपनी वो खास डायलेक्टिकल मेथड, द्वंद्वात्मक पद्धति विकसित करनी शुरू की, और यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। वो जेना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, फिर कुछ समय बम्बर्ग में एक अखबार के संपादक भी रहे, नूर्नबर्ग में एक स्कूल के प्रिंसिपल या रेक्टर बने, फिर हीरलबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और आखिरकार 1818 में वो बर्लिन यूनिवर्सिटी पहुंचे।
बर्लिन, जो उस समय जर्मनी का एक तरह से बौद्धिक केंद्र था।
बिल्कुल, और बर्लिन में ही वो अपने चरम पर पहुंचे। वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रभावशाली दार्शनिक बन गए। उनके लेक्चर बहुत पॉपुलर थे, हालांकि सुना है कि वो लेक्चरर बहुत अच्छे नहीं थे।
हाँ, ये भी कहा जाता है। कहते हैं कि उनकी आवाज थोड़ी दबी हुई रहती थी, वो नोट्स में बुदबुदाते रहते थे, लेकिन उनके विचारों में इतनी ताकत थी कि क्लास खचाखच भरी रहती थी।
और उनकी मृत्यु?
दुखद रूप से 1831 में बर्लिन में हैजा फैला था, कॉलेरा। उसी महामारी में उनकी अचानक मृत्यु हो गई।
चलिए अब उनकी कुछ सबसे अहम और प्रभावशाली रचनाओं पर बात करते हैं। शुरुआत कहां से की जाए? शायद फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट से।
हाँ, मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, यानी आत्मा का परिघटना विज्ञान, 1807 में आई। ये उनकी पहली बड़ी और बहुत ही मौलिक कृति थी।
इसमें क्या खास था?
इसमें वो चेतना की यात्रा का वर्णन करते हैं, कैसे हमारी समझ बिल्कुल साधारण इंद्रिय अनुभव से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे विकसित होती है, कई पड़ावों से गुजरती है, विरोधाभासों का सामना करती है और अंततः परम ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज तक पहुंचती है। ये कोई सीधी सपाट यात्रा नहीं है।
और इसी किताब में उनका वो प्रसिद्ध स्वामी दास द्वंद्ववाद, मास्टर स्लेव डायलेक्टिक भी है, सही कहा?
हाँ हाँ, बिल्कुल। ये शायद इस किताब का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। इसमें हेगल दिखाते हैं कि आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अकेले में विकसित नहीं हो सकती। हमें खुद को समझने के लिए दूसरों की मान्यता, एनकरण जिसे वो कहते हैं, उसकी जरूरत होती है।
मान्यता मतलब रिकग्निशन।
हाँ, रिकग्निशन। स्वामी और दास के रिश्ते के विश्लेषण से वो दिखाते हैं कि कैसे पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन, मानव इतिहास का एक केंद्रीय तत्व है। ये विचार आज भी सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसके बाद आई उनकी एक और बहुत ही मुश्किल लेकिन शायद सबसे अहम किताब, साइंस ऑफ लॉजिक, यानी तर्क का विज्ञान। 1812 से 1816 के बीच कहते हैं ये उनके दर्शन का मर्म है।
हाँ, कई लोग इसे हेगल का सबसे महत्वपूर्ण और यकीनन सबसे मुश्किल काम मानते हैं। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किताब है। इसमें हेगल तर्क की जो कैटेगरीज हैं, जैसे होना, बीइंग, ना होना, नथिंगनेस, बनना, बिकमिंग,
हाँ,
इनको सिर्फ हमारे सोचने के टूल नहीं मानते। वो तर्क करते हैं कि ये कैटेगरीज खुद वास्तविकता की, रियलिटी की संरचना है। उनके लिए तर्क कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि वो डायनामिक है, गतिशील है, लगातार विकसित हो रहा है और अंततः परम विचार, एब्सोल्यूट आइडिया तक पहुंचता है।
ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है। मतलब तर्क सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, दुनिया में ही मौजूद है।
बिल्कुल, यही उनका निरपेक्ष आदर्शवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है। फिर 1821 में आई एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, यानी अधिकार के दर्शन के तत्व। ये उनका मुख्य राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है।
इसमें राज्य और स्वतंत्रता के बारे में उनके क्या विचार थे?
इसमें वो नैतिक जीवन, सिटलिकेट का विश्लेषण करते हैं, जो परिवार, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और राज्य के जरिए प्रकट होता है। और यहाँ हेगल का तर्क थोड़ा विवादास्पद भी है। वो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है।
तो फिर किस में है?
बल्कि एक तर्कसंगत और सुव्यवस्थित राज्य के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने में है। उनके लिए राज्य कोई बनावटी चीज नहीं, बल्कि एक नैतिक इकाई है, एक एथिकल ऑर्गेनिज्म जो व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता विकसित करने का ढांचा और अवसर देता है।
अच्छा, और आखिर में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए उनके लेक्चर्स, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दर्शन पर व्याख्यान।
हाँ,
इसमें उन्होंने इतिहास को कैसे देखा?
इन लेक्चर्स में उन्होंने इतिहास को स्वतंत्रता की चेतना के क्रमिक विकास की कहानी के रूप में पेश किया। उन्होंने विश्व आत्मा, वर्ल्ड स्पिरिट,
या वेल्टगाइस्ट का कॉन्सेप्ट दिया?
विश्व आत्मा।
हाँ, एक तरह की कलेक्टिव स्पिरिट जो अलग अलग सभ्यताओं और युगों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है और धीरे धीरे अपनी तर्कसंगतता और अपनी स्वतंत्रता को पहचानती है। उनके लिए इतिहास का एक लक्ष्य है, एक टीलियोलॉजी है, और वो लक्ष्य है स्वतंत्रता की पूरी प्राप्ति।
तो अगर इन सभी कामों को एक साथ देखें तो हेगल की जो केंद्रीय परियोजना थी वो समझ में आती है कि पूरी वास्तविकता को एक गतिशील, तर्कसंगत और एकीकृत, एक होलिस्टिक सिस्टम के रूप में समझना।
बिल्कुल।
और इस पूरी समझ का जो मुख्य औजार था वो था उनका द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक।
हाँ, डायलेक्टिक हेगल के दर्शन की चाबी है, कह सकते हैं। इसे अक्सर बहुत सरलीकृत रूप में तीन चरणों में बताया जाता है। सीसिस, वाद,
एंटीथीसिस,
प्रतिवाद,
और सिंथेसिस,
संवाद।
हाँ, ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ बहस करने का एक तरीका है?
या कोई भी स्थिति जिसे हम थीसिस कह सकते हैं, वो अपने भीतर ही अपना विरोधाभास, अपना उल्टा यानी एंटीथीसिस पैदा करती है।
अच्छा।
इन दोनों के बीच एक तनाव होता है, एक संघर्ष होता है, और इस संघर्ष से एक नई, ज्यादा ऊंची, ज्यादा जटिल स्थिति उभरती है, सिंथेसिस, जिसमें पहले दोनों के तत्व शामिल होते हैं लेकिन एक नए, बेहतर रूप में।
और फिर?
फिर ये सिंथेसिस खुद एक नया थीसिस बन जाता है, और ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है ऊंचे से ऊंचे स्तर पर। हेगल के लिए यही तर्क इतिहास और चेतना के विकास का इंजन है। विरोधाभास कोई रुकावट नहीं बल्कि प्रगति का जरिया है।
और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो है गाइस्ट।
हाँ, गाइस्ट ये एक मुश्किल शब्द है। इसे सिर्फ व्यक्तिगत आत्मा या मन समझना काफी नहीं होगा। ये एक तरह की सामूहिक ऐतिहासिक चेतना है, एक स्पिरिट है जो मानवता के इतिहास में धीरे धीरे खुद को जान रही है, समझ रही है और अपनी स्वतंत्रता को साकार कर रही है। पूरी मानव सभ्यता की कहानी हेगल के लिए इस गाइस्ट के आत्मज्ञान की यात्रा है।
और यहीं से उनका वो प्रसिद्ध और थोड़ा चौंकाने वाला कथन आता है, जो तर्कसंगत है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह तर्कसंगत है।
हाँ, व्हाट इज रैशनल इज एक्चुअल एंड व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल, ये उनके सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा बहस किए गए कथनों में से एक है।
इसका क्या मतलब है? क्या दुनिया में सब कुछ ठीक है?
संगत संरचना है, और इतिहास की प्रक्रिया भले ही वो कितनी भी उथल पुथल भरी क्यों ना हो, अंततः इस तर्क संगतता को प्रकट करेगी। तर्क सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि दुनिया का आधार है। ये बहुत बड़ा दावा है।
तो हेगल ने दर्शन, इतिहास, राजनीति, इन सबको देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। उनके विचारों का असर कैसा रहा? जाहिर है बहुत गहरा रहा होगा।
हाँ, उनका प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा रहा है, लेकिन उतना ही विवादास्पद भी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके जो फॉलोअर्स थे वो दो मुख्य गुटों में बट गए।
अच्छा।
एक थे दक्षिणपंथी हेगेलियंस या राइट हेगेलियंस। ये ज्यादा कंजर्वेटिव थे। उन्होंने हेगेल के दर्शन का इस्तेमाल उस समय के प्रशियाई राज्य और ईसाई धर्म का समर्थन करने के लिए किया। उन्होंने हेगेल के विचारों के तर्कसंगत स्थापित व्यवस्था वाले पहलुओं पर जोर दिया।
और दूसरे थे वामपंथी, लेफ्ट हेगेलियंस या यंग हेगेलियंस।
हाँ, और ये गुट ज्यादा रेडिकल था। इनमें लुडविग फायरबाख और सबसे मशहूर कार्ल मार्क्स जैसे विचारक शामिल थे।
हाँ, मार्क्स।
उन्होंने हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया लेकिन उसका इस्तेमाल धर्म, समाज और राजनीति की आलोचना करने के लिए किया। उन्होंने हेगेल के सिस्टम की आलोचनात्मक और क्रांतिकारी क्षमता पर जोर दिया।
कार्ल मार्क्स का जिक्र आया, अक्सर कहा जाता है कि मार्क्स ने हेगेल को सिर के बल खड़ा कर दिया। इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये एक प्रसिद्ध मुहावरा है। देखिए, मार्क्स हेगेल की डायलेक्टिकल मेथड से बहुत प्रभावित थे कि इतिहास संघर्ष और विरोधाभास के जरिए आगे बढ़ता है। ये विचार उन्होंने हेगेल से लिया। लेकिन जहां हेगेल मानते थे कि इतिहास को चलाने वाली शक्ति विचार हैं, आइडियाज हैं, गाइस्ट है,
हाँ,
वहीं मार्क्स ने कहा कि नहीं, असली चालक शक्ति विचार नहीं बल्कि भौतिक स्थितियां हैं, आर्थिक संबंध हैं, वर्ग संघर्ष है। तो उन्होंने हेगेल के आदर्शवाद, आइडियलिज्म को भौतिकवाद, मटीरियलिज्म में बदल दिया। इससे बना उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। तो उन्होंने हेगेल का तरीका तो लिया पर उसका आधार बदल दिया, उसे विचारों की दुनिया से निकालकर जमीन पर ले आए, कह सकते हैं।
ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और क्या हेगेल के विचारों का विरोध भी हुआ? क्या दूसरे दर्शन उनसे असहमत थे?
बिल्कुल, बहुत जोरदार विरोध भी हुआ, खासतौर पर अस्तित्ववादी कई विचारकों ने, जैसे सोरेन कीर्केगार्ड ने।
कीर्केगार्ड?
हाँ, कीर्केगार्ड हेगेल की उस भव्य अमूर्त प्रणाली के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्हें लगता था कि हेगेल की इस बड़ी बड़ी बातों वाली व्यवस्था में व्यक्ति के निजी, भावनात्मक,
जो उसका अपना सब्जेक्टिव अनुभव होता है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है।
मतलब इंडिविजुअल खो गया,
सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से।
आज के समय में क्या हेगेल सचमुच प्रासंगिक है? उनके विचार इतने जटिल लगते हैं और उस जमाने के लगते हैं।
आपको हैरानी होगी, लेकिन हाँ, वे आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। उनकी वो मान्यता वाली अवधारणा अनर कैनू रिकग्निशन, वो आज भी सामाजिक न्याय, पहचान की राजनीति, मानवाधिकारों पर जो बहसें होती हैं, उनके केंद्र में है।
कैसे?
कैसे व्यक्ति और समूह समाज में अपनी पहचान, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं, इसे समझने के लिए हेगेल का वो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक वाला ढांचा आज भी बहुत उपयोगी है। आधुनिक राज्य की प्रकृति क्या है, स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, क्या इतिहास की कोई दिशा है, इन सब सवालों पर आज भी जो बहसें होती हैं, वो कहीं ना कहीं हेगेल के विचारों से जुड़ी हुई हैं। चार्ल्स टेलर, एक्सल होनेथ जैसे आज के दौर की कई बड़े दार्शनिक हेगेलियन थीम पर लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें नए संदर्भों में देख रहे हैं।
उनके कुछ और मशहूर कोट्स हैं जो उनके विचारों की झलक देते हैं। एक आपने पहले भी जिक्र किया था, मिनर्वा का उल्लू केवल सांझ ढलने पर ही अपने पंख फैलाता है। इसका क्या अर्थ है?
हाँ, ये बहुत ही सुंदर और गहरा कथन है। एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट से है ये। मिनर्वा ज्ञान की रोमन देवी है और उनका प्रतीक है उल्लू। तो हेगेल कह रहे हैं कि दर्शन या ज्ञान किसी युग या सभ्यता को पूरी तरह तभी समझ पाता है जब वो युग या सभ्यता अपने अंत के करीब हो, मतलब जब शाम ढल रही हो।
यानी समझ हमेशा बाद में आती है।
हाँ, एक तरह से सच्ची समझ अक्सर पीछे मुड़कर देखने पर रेट्रोस्पेक्ट में ही आती है। हम अपने समय को जब हम उसमें जी रहे होते हैं शायद पूरी तरह नहीं समझ पाते। जब वो बीत रहा होता है तब उसकी तस्वीर ज्यादा साफ होती है।
और एक थोड़ा निराशावादी सा लगने वाला कोट भी है उनका, अनुभव और इतिहास यही सिखाते हैं कि लोग और सरकारें इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते हैं, न ही उससे निकाले गए सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता उस दार्शनिक से जो इतिहास में तर्क और प्रगति देखता है?
हाँ, ये थोड़ा व्यंग्यात्मक जरूर लगता है। ये दिखाता है कि हेगेल सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वो यथार्थवादी भी थे। भले ही वो मानते थे कि इतिहास की एक गहरी तर्कसंगत दिशा है, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि इंसान अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखने में अक्सर नाकाम रहते हैं। ये मानवीय स्वभाव पर या शायद सरकारों के कामकाज पर एक तीखी टिप्पणी है।
और एक और जरूरी बात जो उन्होंने फिनोमिनोलॉजी में कही थी, जो परिचित है वो आवश्यक रूप से ज्ञात नहीं है।
हाँ, व्हाट इज फेमिलियर इज नॉट नेसेसरली नोन। ये बहुत गहरी बात है। सिर्फ चीजों को रोज देखना, उनसे परिचित होना ही काफी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान उनके गहरे अर्थ को, उनके आपसी संबंधों को, उनकी कॉन्सेप्चुअल संरचना को समझने से आता है। हमें रोजमर्रा की सतही पहचान से आगे बढ़कर व्यवस्थित गहरी समझ तक पहुंचना होता है।
इतने प्रभावशाली होने के बावजूद हेगेल की आलोचना भी बहुत जबरदस्त हुई है। शायद वो दर्शन के इतिहास में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग फिगर्स में से एक हैं। एक आम शिकायत तो उनकी भाषा और शैली को लेकर ही है।
हाँ, ये तो है। उनकी जटिल, मुश्किल, कहें तो ऑब्स्क्योर लिखन शैली कुख्यात है। उनके वाक्य बहुत लंबे होते हैं, घुमावदार होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शब्दों से भरे होते हैं। उनके एक समकालीन आलोचक थे आर्थर शोपेनहावर।
हाँ, शोपेनहावर।
उन्होंने तो हेगेल पर धूर्त चार्लटन होने का आरोप लगाया था। कहा कि वो जानबूझकर इतना मुश्किल लिखते हैं ताकि लोग समझ ही ना पाएं और उन्हें महान मान लें।
ओह,
हाँ हाँ।
हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि उनके विचार इतने नए और जटिल थे कि उन्हें व्यक्त करने के लिए ऐसी ही दकीक भाषा जरूरी थी, विषय ही मुश्किल था।
एक और बहुत गंभीर आरोप उन पर लगता है कि वो 20वीं सदी के जो सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन शासन थे, उनके दार्शनिक पिता महा थे।
हाँ, ये आरोप मुख्य रूप से दार्शनिक कार्ल पॉपर ने लगाया था अपनी मशहूर किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में। पॉपर का तर्क था कि हेगेल ने व्यक्ति के ऊपर राज्य को इतना ज्यादा महिमा मंडित किया कि उससे फासीवाद और कम्युनिज्म जैसे टोटलिटेरियन शासनों के लिए एक तरह की बौद्धिक जमीन तैयार हो गई।
क्या ये सही है?
ये एक बहुत प्रभावशाली आलोचना रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई हेगेल स्कॉलर्स इसे हेगेल के विचारों की एकतरफा या गलत व्याख्या मानते हैं। वो कहते हैं कि हेगेल का जो तर्कसंगत राज्य का विचार था वो असल में उदारवादी मूल्यों जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन के ज्यादा करीब था। ये एक बहुत जटिल और आज तक चलने वाली बहस है। और कीर्केगार्ड जैसे अस्तित्ववादियों ने भी उनकी आलोचना की, जैसा हमने पहले बात की कि उनकी बड़ी सी प्रणाली में व्यक्ति के निजी अनुभव के लिए कोई जगह नहीं है।
हाँ, ये आलोचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेगल की उस भव्य सिस्टमैटिक दुनिया में व्यक्ति की अपनी चिंता, उसका डर, उसकी आस्था, उसके निजी संघर्ष, इन सब का क्या स्थान है? अस्तित्ववादियों को लगा कि हेगल ने अमूर्त विश्व आत्मा और इतिहास की बड़ी कहानी के चक्कर में जीते जागते महसूस करने वाले इंसान को कहीं पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा आज के दौर में उनके यूरोकेंद्रवाद, यूरोसेंट्रिज्म की भी काफी आलोचना होती है कि कैसे उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को इतिहास के शिखर पर रखा और गैर यूरोपीय संस्कृतियों को कमतर या इतिहास से बाहर मान लिया। और हाँ, उनका वो परम ज्ञान तक पहुंचने का दावा, वो भी कई लोगों को थोड़ा बौद्धिक अहंकार जैसा लगता है।
इतनी गंभीर और जटिल बातों के बीच क्या हेगल से जुड़े कुछ हल्के फुल्के रोचक किस्से भी हैं? उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी?
हाँ, कुछ हैं बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा, वो लेक्चर देने में बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। कहते हैं वो अपनी ही आवाज में बुदबुदाते थे, खांसते रहते थे, नोट्स बिखरे रहते थे, फिर भी उनके दिमाग की कशिश छात्रों को खींच लाती थी।
अच्छा।
वो थोड़े भुलक्कड़ किस्म के भी थे और अपनी वेशभूषा को लेकर थोड़े लापरवाह। अक्सर उनके कपड़ों पर नसवार, स्नफ के धब्बे लगे रहते थे।
और निजी जिंदगी में कैसे थे? क्या वो बस दिन भर गहरी फिलॉसफी में ही डूबे रहते थे?
नहीं, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं उन्हें रोज शाम को एक ग्लास वाइन पीना पसंद था, दोस्तों के साथ ताश खेलना भी पसंद करते थे, और वो अखबार पढ़ने के बड़े शौकीन थे।
अखबार?
हाँ, वो अखबार पढ़ने को कहते थे यथार्थवादी की सुबह की प्रार्थना, द रियलिस्ट्स मॉर्निंग प्रेयर। ये दिखाता है कि वो दुनिया की घटनाओं से भी जुड़े रहना चाहते थे। उनका एक नाजायज बेटा भी था, लुडविक, जिसे उन्होंने बाद में अपनी पत्नी मैरी वॉन टूचर से शादी के बाद अपने घर में जगा दी।
और उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, बर्लिन में।
हाँ, 1831 की महामारी में। एक और दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि वो थोड़े वहमी थे, हाइपोकॉन्ड्रियाक। उन्हें डर लगा रहता था कि वो जल्दी मर जाएंगे, अपने एक दार्शनिक हीरो नोवालिस की तरह। और वो किस्सा तो है ही कि उन्होंने अपनी महान कृति फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जेना की लड़ाई की रात को पूरी की, जब बाहर नेपोलियन की तोपों की आवाजें आ रही थी।
वाह, पता नहीं ये सच है या नहीं, पर सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है।
हाँ बिल्कुल, ये उनके जीवन और उनके समय के माहौल को जरूर दर्शाता है।
तो कुल मिलाकर देखें, हेगल एक असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी विचारक थे, जिन्होंने कोशिश की पूरी की पूरी वास्तविकता को, हर चीज को एक अकेली तर्कसंगत प्रणाली में समेट लिया जाए।
हाँ, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी।
और उनका वो द्वंद्ववाद का विचार कि प्रगति हमेशा विरोधाभासों के जरिए, संघर्ष के जरिए होती है, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?
बिल्कुल, उनकी विरासत जटिल है, उनके विचार यकीनन चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन वो हमें दुनिया को देखने का, इतिहास को समझने का और शायद खुद को भी समझने का एक नया नजरिया देते हैं। उन्होंने दिखाया कि सत्य कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक रूप से विकसित होता है, और हमारी पहचान, हमारा सेल्फ, वो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में, उनकी मान्यता में ही बनती है। और अंत में शायद ये सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, क्या हम आज की दुनिया में जो संघर्ष देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या पहचान को लेकर हों, क्या उनमें हम हेगल के द्वंद्ववाद को काम करते हुए देख सकते हैं? क्या इतिहास वाकई किसी तर्कसंगत अंत की ओर बढ़ रहा है जैसा हेगल मानते थे, या फिर ये विचार ही अब शायद पुराना पड़ चुका है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हेगल को पढ़ने के बाद भी देर तक सोचा जा सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।